ओम शांति ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि तुम्हें नशा रहना चाहिए और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि तुम बच्चे शूद्र वर्ण से अभी ब्राह्मण कुल में आए हो। ब्राह्मण कुल में वही आएंगे जो इस परिवार के होंगे। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया में गाते रहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु कैसे शिव बाबा हमारे माता पिता हैं और माता कौन है, और वो भी बाबा ने आज स्पष्ट किया है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 8 मई 2026। आज की तारीख 8 मई 2026। मुरली का मुख्य हरि। मीठे बच्चे अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। कौन सी खुशी? कि बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, तो बाबा कहते इसी खुशी में रहो। मीठे बच्चे अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। आज का प्रश्न है, कौन सा गृह राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सा राज होगा? इसका उत्तर है, निराकार शिव बाबा हमारा पिता भी है। और कौन है बताओ? और कौन है बाबा? और कौन है, भूल गए क्या? पिता भी है, माता भी है, और क्या है, गीत गाते ना, बंधु भी है, सखा भी है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी कौन है, कौन है बोलो, माता है, हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे मात पिता बंधु सखा बनते हैं? ये गुहर गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते। दुनिया में किसी को भी बताओ ना कि शिव बाबा हमारा माता भी है, पिता भी है, हमारा बंधु भी है, सखा भी है, दुनिया वाले वो अनुभव नहीं करते, बाबा के बच्चे तो अनुभव करते ना। और ये गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही ये यथार्थ रीति समझेंगे। देखो कितना बड़ा राज बताया, ब्राह्मण कुल में भी अंतर है कि जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही ये राज समझ सकेंगे। तो बाबा कहते उसमें भी दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। अच्छा, दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हाथ खड़ा करो सभी। अच्छा, अच्छी तरह समझ लिया ना कि बाबा कौन है, हमारा पिता भी है, और कौन है बताओ, और कौन है बताओ, याद ही नहीं है तो क्या बताएं? अरे बोलो ना, माता भी है, फिर से बोलो भाई, बोलो कि नहीं, भवन भवन में बैठे हैं क्या, मुरली का बताओ ना। तो बाबा कहते उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझ सकेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? हमारा बाप दादा आया हुआ। अब ये बाप दादा शब्द दुनिया के लिए कितना एक वंडरफुल शब्द है, उनको समझ नहीं आता है कि बाबा भी है, दादा भी है, तो वो नहीं समझते। बाबा ने बताया बाप दादा का अर्थ क्या है। बच्चे समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ। शिव बाबा जब तक ब्रह्मा तन में प्रवेश ना हो तब तक वो बच्चों से मिल नहीं सकते हैं, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है बाप इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ। तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। कभी कहे ना बाबा, देखो अव्यक्त मुरली में हमेशा क्या कहते हैं, बाप दादा। और साकार में भी बाबा ने बात को स्पष्ट किया था कि कहेंगे कि बाप दादा आए हैं। ये टीचर भी हैं, बाप भी हैं, दादा भी हैं, टीचर भी हैं। बाप दादा के बगैर कुछ भी बता न सके। शिव बाबा का बाहर से बताएं तो कोई भी बच्चे समझ नहीं सकेंगे। बाबा जो है शिव बाबा के तन में, ब्रह्मा के तन में आते तब जाके समझाते। इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा के बगैर तो कुछ भी बता न सके। बुद्धि चलनी चाहिए क्योंकि ये नई बात है ना। बाबा बाबा कैसे हैं, बाप दादा कैसे हैं, कैसे हम मिलते, तो बाबा कहते इस पे भी विचार सारा मंथन करना चाहिए। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, भगवान को याद करते हैं लेकिन उसको जानते नहीं है। यहाँ तो हम जानते भी हैं और बाबा से मिलन भी मनाते हैं। कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उसके शरीर का नाम जानते हैं, हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है। लौकिक में पूछो ना, कहेंगे हमारे माँ बाप हैं, हमारे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तो बाबा कहते वो बताएंगे हमारा बाबा हमारी फलानी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है, मनुष्य ने जो भी बनाया है उसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग है। भाई गायन करते हैं, कौन सा गायन करते हैं कि तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा, ये एक के लिए गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए नहीं गाया जाता, परमात्मा के लिए गायन है। ब्रह्मा के लिए नहीं गाते हैं, ब्रह्मा के लिए नहीं गाया जाता, उनका तो नाम रूप भी बुद्धि में नहीं आता, न विष्णु का न शंकर का। विष्णु को भी नहीं कहेंगे तमेव माता पिता, और शंकर को भी नहीं कहेंगे, शंकर के लिए तो विनाशकारी दिखाते ना, तो उन न विष्णु को न शंकर को। गाते तुम्हें तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हें बुद्धि ऊपर में जाएगी। श्री कृष्ण को याद कोई कर न सके, हालांकि पुकारते रहते श्री कृष्ण लेकिन याद किसको करते, परमात्मा को। श्री कृष्ण को कोई याद कर न सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे क्योंकि उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं जब यहाँ बैठते हो तो क्या होना चाहिए। बाबा कहते जब यहाँ बैठते हो तो लौकिक संबंधों से बुद्धि योग जो है वो हटना चाहिए, नहीं तो बाबा को याद नहीं कर सके। या तो बाबा को याद करो या फिर लौकिक संबंधों को याद करो। तो बाबा कहते जब यहाँ बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पर लौकिक बाप को याद करो। इस समय ये सन्मुख है, कौन बाबा हमारे सन्मुख है, तो क्या करना है, बाबा को याद करना ना। तो बाबा कहते इस समय ये सन्मुख है, भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके गाते। भक्ति मार्ग में पूजा करेंगे बैठेंगे तो सदा आंखें ऊपर करते, और यहाँ पर ऊपर करते या नीचे करते कौन बताएगा। जब आ गया ना माया का रूप तो एकदम नीचे सो जाएंगे हैं, और नहीं तो बाबा को सामने देखते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम मात पिता हे भगवान कहे याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को याद नहीं करते, बाबा भगवान को याद करते हैं तो उस समय भगवान को शिवलिंग के रूप में याद नहीं करते, मंदिर में जाएंगे तो याद करेंगे। तो बाबा कहते भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते, तोते मिसल ऐसे गाते रहते। तोते की कहानी है ना, एक बार तोता नल पे बैठा हुआ था, उसका नाम था गंगाराम। उसको पढ़ाते थे गंगाराम नल पे मत बैठना, वो तोता बार बार कहते गंगाराम नल पे मत बैठना, बैठा हुआ भी है और बार बार क्या कहता है गंगाराम नल पे मत बैठना। तो बाबा कहते अभी भी मनुष्य क्या करते हैं, तोते मिसल गाते हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते, ये तो महाराजा महारानी मिसल है। बाबा कहते उनका बच्चा भी उनको क्या कहेगा, मात पिता कहेंगे। लक्ष्मी नारायण के जो बच्चे होंगे उनको मात पिता कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि तमेव माता है तुम मात पिता, उनको कहेंगे बच्चे कहेंगे आप हमारे माता भी हो पिता भी हो। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कह सकते, ये तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही मात पिता कहेंगे, बंधु सखा नहीं कहेंगे। बच्चा तो क्या कहेगा, अपने पिता को पिता और माँ को माँ कहेगा, लेकिन बाबा कहते बंधु सखा नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु ये उनकी बुद्धि में नहीं आता है कि शिवलिंग होगा, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान किसने कहा किसको कहा ये भी कुछ पता नहीं। अगर ये ज्ञान होता, कौन सा ज्ञान, मैं आत्मा हूँ उनको बुलाता हूँ, मैं आत्मा हूँ उनको बुलाता हूँ, तो ये समझे कि वह निराकार परमात्मा। आत्मा रूप में तो कभी भगवान को बुलाया नहीं, कभी याद किया ही नहीं है, परमात्मा है लेकिन निराकार है, वो तो नहीं समझते ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सिर्फ कह देते हे भगवान किसने कहा किसको कहा कुछ भी पता नहीं। अगर ये ज्ञान होता कि मैं आत्मा हूँ उनको बुलाता हूँ, तो ये समझे कि निराकार परमात्मा है, उसका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते, उनसे प्राप्ति क्या होगी कब होगी ये कुछ भी नहीं जान। भगवान कौन है, कब आएंगे, उनसे हमको क्या मिलता है और कब मिलेगा, तो कुछ नहीं जानते। बस सोचते हे भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो, हमारे बच्चे को ठीक कर दो, हमारा ये काम कर दो। तो ब्राह्मण कुल में भी क्या करते हैं, क्या कहेंगे, बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो। माताएं करती है ना ऐसे कि नहीं है, बाबा मेरा ये काम कर दो। तो बाबा कहते बाबा तो कर रहे हैं, तो बाबा को क्यों कहते हो बार बार, ये तो फिर भक्ति मार्ग का हो गया ना, बाबा हमारा ये काम कर दो। फिर कहेंगे बाबा को कहना हमारा ये काम कर दे। कई बार भाई बहने बोलते ना बाबा को ये कहना, बाबा कहते उनको खुद नहीं कहना आता है, इसलिए बाबा कहते जो भी बात है बाबा से खुद करो, योग में बैठ के करो, बाबा से बात करो और बाबा उस समस्या का समाधान कर देंगे। तो बाबा कहते हैं उसे क्या प्राप्ति होगी कब होगी ये कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम भी नहीं जानते थे, वो तो कुछ भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया। जो शिव बाबा के बच्चे वो हाथ खड़ा करें, और जो बाप दादा के बच्चे हैं, देखो शिव बाबा के बच्चे हम आत्मा रूप में, और बाप दादा के बच्चे हम ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों के ही बच्चे हैं। अभी तुम जानते हो कि ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है, इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। अभी शुरू शुरू में क्या है, जब जनगणना करते थे ना तो उसमें हम लोग जो नाम लिखते थे, अभी तो वो लौकिक नाम और लौकिक नाम सारा लिखते हैं, उस समय नाम लिखते थे अपना पिता का नाम प्रजापिता ब्रह्मा, तो जनगणना वाला बार बार आता है सब इतने ब्रह्मा के बच्चे हैं, सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। अभी तो वो जबरदस्ती लौकिक नाम भी लिखवाते हैं, लेकिन उस समय सब ब्रह्मा के ही बच्चे हम लोग लिखते थे। तो अभी तो दोनों बातें लौकिक और अलौकिक दोनों लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं इस ब्रह्म माता द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं। बाबा कहते बताते, दुनिया वाले कहेंगे नई सृष्टि रचते, लेकिन बाबा कहते नहीं, बाबा उस सृष्टि को ट्रांसफर करते हैं, पुरानी से नई बनाते हैं। ऐसे भी नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब मात पिता कहते, बाबा ने हम बच्चों को अपनी गोद में लिया, एडॉप्ट किया, तो हम सभी बाबा को मात पिता कहते हैं। तो शिव पिता ठहरा और माता कौन है बताओ, माता कौन है, हैं? माता कौन है, कितनी माता है बताओ, हैं? कहते आज मदर्स डे है, बताओ, एक ब्रह्मा माता और दूसरा कौन है, दूसरी माता जगत अम्बा, और तीसरी है, तीसरी माता कौन है, ज्ञान देने वाली जो होती है ना, उसको भी कहते हैं, सेंटर इंचार्ज को भी कहते हैं माता, और चौथा कई बार कहते ड्रामा, ड्रामा भी हमारी माँ है। ड्रामा बहुत अच्छा है, क्यों, बहुत कुछ सिखाता है, और ड्रामा पे पक्के हो जाओ तो सब चीज सहज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, अब मात पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी, उनको कहा जाता है मात पिता। अब मात पिता कहते हैं तो बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है मात पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा भी क्या है, और कहते भी हैं कि ब्रह्मकुटि के बीच में रहती है। दुनिया वाले तो कहते ना ब्रह्मकुटि के बीच में चमकता है अजब सितारा, लेकिन बाबा क्लियर करके बताते हैं कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ है। कहते भी हैं ब्रह्मकुटि के बीच में रहती है, स्टार मिसल है, और कुछ भी नहीं जानते, आत्मा की कॉन्शियस में नहीं रहते हैं वो, ब्रह्मकुटि के बीच में रहती है, स्टार मिसल है, लेकिन मैं आत्मा ऐसी वो नहीं जानते हैं। ये कह नहीं सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है, आत्मा शरीर द्वारा, बाबा बताते हैं आत्मा क्या है, शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। तो आज बाबा आत्मा का भी लेसन पक्का कर रहे हैं, और बाबा कहते तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं, और लौकिक वाले तो कोई लेता नहीं है। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में आत्मा एक शरीर छोड़ती है, तो सारा परिवार ही बदल जाता। आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर के दूसरे घर में जन्म लिया, उसके माता पिता परिवार सब बदल जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई एडॉप्ट करते हैं तो परिवार भी बदल जाता। लौकिक में किसको बच्चे नहीं होते, किसी न किसी को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो जिसको एडॉप्ट किया उस बच्चे का परिवार भी बदल जाएगा, चाहे लौकिक याद भी होगा, लेकिन जिसने एडॉप्ट किया वही हो गया ना उसका परिवार। अगर छोटेपन में एडॉप्ट किया है एक साल में, तो उसको पता ही नहीं कि मेरा परिवार कौन है, तो उसे कोई समझेगा ना वो। तो बाबा कहते हैं मात पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो एडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते, कोई तो बड़े हो जाते हैं तब उनको एडॉप्ट करते हैं, कोई छोटे को एडॉप्ट करते हैं, बाद में जाके उसको मालूम पड़ता मेरे माता पिता ये थे, इन्होंने मुझे एडॉप्ट किया है। तो बाबा कहते हैं माता पिता जिसने जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो एडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। फिर बाबा भी क्यों बता रहे हैं ये बात कि तुम बच्चे शूद्र घराने से निकल करके ब्राह्मण घराने में आए, तो बाबा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो, ब्रह्मा तन से तुमको एडॉप्ट किया, तो अब हमारा अलौकिक परिवार कौन सा है? ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण परिवार, और ब्रह्मा तन से बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी। नशा है ना कि हम सब कहाँ हैं? ब्राह्मण कुल में है, पर नशा की नहीं। बाबा कहते नशा रहे, अभी हम ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों का काम क्या होता है? ब्राह्मणों के बहुत नियम मर्यादाएं होती हैं। तो बाबा भी कहते बच्चों को जो पक्के ब्राह्मण हैं वो ईश्वरीय जन्म के और ब्राह्मण जीवन के नियम मर्यादाओं पर अच्छी तरह चलते हैं। तो बाबा कहते ब्रह्मा तन से तुमको एडॉप्ट किया है, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। ये बातें शास्त्रों में लिखी जा सकती नहीं है, ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती। ये तो समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते नहीं। कैसे ब्राह्मण कुल बना, कैसे शिव बाबा ने अडॉप्ट किया ब्रह्मा तन द्वारा, वो कुछ भी नहीं समझते। बाबा कहते लिखो तो भी नहीं समझेंगे। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। ये हो गई माँ। कौन है माँ बताओ? कौन है माँ बताओ ना, बोलो जरा। ब्रह्मा माँ, बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया ना। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ये कितनी गुप्त बात है। अब उनको कहो कि ये ब्रह्मा हमारी माँ है, जो सुनेगा कहेंगे पता नहीं क्या कहते हैं। अभी बाप दादा आते थे, उनको गुलजार दादी के तन में बाप दादा है तो हम कहते बाबा आए हैं। कोई छोटे छोटे बच्चे कहते बाबा कहाँ है, ये तो बहन बैठी है, ये तो दादी बैठी है। क्योंकि ये बच्चे तो नहीं समझ सकते ना, बड़े बाहर वाले भी नहीं समझ सकते। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, इस द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ये कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख के कोई समझ ना सके। समझेंगे भी वे जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। अब बाबा ने कितनी अच्छी राज की बात बताई। एक तो इन बातों को कौन समझेगा जो दैवी कुल के होंगे और ब्राह्मण कुल के होंगे और दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। नहीं किसकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं, ना बुद्धि में बैठेगा ना किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उसमें भी सब बच्चों भी नंबर वार हैं। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई इन गहरी गहरी बातों को समझते भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है, जिनकी बुद्धि में बैठता है, गाया जाता है तमेव मातृश पिता तमेव बंधु सखा। याद किया जाता है शिव बाबा को, फिर कहते हैं तुम मात पिता। एक बाप फिर मात पिता कैसे? बाबा कहते वो तो बाप है, फिर मात पिता कैसे हो सकता है? ये बातें और कोई समझ ना सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया। जो बातें वही पढ़ते रहते हैं, वही बताते रहते हैं। कहते सत्वचन महाराज, सत्वचन बाबा कहते जैसे कि कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे कि तुमको कोई ने बताया है, तुम कंठ कर लिया है तो इसलिए तुम बताते। तो शुरू शुरू में सुनते थे ना तो ज्ञान सुनाते थे तो क्या कहते ये कल्पना है, सुनने को तैयार नहीं होते थे। अभी जब उनको सुनाते तो सब बात को समझते भी हैं और उनको रियल भी लगता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुमको भी कहेंगे, तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। ऐसे नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना समझा नहीं सकते। शुरू में बाबा ने देखा ये ज्ञान इतना, जैसे समझाते थे लोग बहस करते थे, जो नए नए बच्चे होते थे संकोच करते थे, डरते थे तो समझाते नहीं थे। जिनको पक्का निश्चय था वो अच्छी तरह समझाते थे। तो बाबा कहते ऐसे यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है। शुरू में बहुत बहस करके उनको कहो तुम आत्मा, सुनते ही नहीं थे, बहस ही करते थे, लेकिन अभी तो वो सब समझ जाते हैं ना। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है, ये बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनः जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे किए, अब बाप फिर से वर्षा देने आए हैं। ये किसको समझाना बहुत सहज है। पहले वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिर गए, अब फिर से लेना है। तुम माता पिता किसको कहते हो? विचार करने की बात है ना, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती हैं, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता। देखो वशी बाबा ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, आप ब्रह्मा को तो माँ नहीं कह सकते ना। तो फिर जब यज्ञ में सब थे, बहुत सी बहनें थी, तो फिर शिव बाबा ने जगत अम्बा माँ सरस्वती को जगत अम्बा का टाइटल दिया, क्योंकि बहनों को संभालने के लिए बहन चाहिए। तो बाबा ने शिव बाबा ने मम्मा को जगत अम्बा का टाइटल दिया। तो बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, मेल को तो मेल ही कहेंगे ना, जगत पिता कहेंगे, जगत अम्बा नहीं कह सकते, मेल को तो जगत अम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजा पिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ है? प्रजा पिता है ब्रह्मा, तो प्रजा की माँ कौन है? तो इसलिए बाबा कहते हैं तो एडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव है तो फिर आदि देवी को भी मुकर्रर किया जाता, शास्त्रों में भी गाए ना आदि देव और आदि देवी है। तो बाबा कहते आदि देव को फिर बाबा ने उनको एडॉप्ट करके उनको आदि देवी का टाइटल दिया। आदि देव है तो फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है? अभी जाओ ये अम्बाजी में, जगत अम्बा पर इतना मेला होता है, इतना मेला होता है, और भारत के विभिन्न स्थानों पर भी जगत अम्बा पर कितने मेले लगते हैं, जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानते हैं। कलकत्ते में काली का मंदिर है। अब जगत अम्बा के अनेक टाइटल है, अनेक नाम है, अनेक रूप दिखाए। कलकत्ते में काली का जो मंदिर है इतना भयानक है कि काली जो है एकदम पूरी काली, और उसकी जीभ इतनी बाहर निकली हुई जैसे ना, आंखें भी बड़ी बड़ी दिखाते। अब बाबा कहते हो काली की पूजा बहुत करते हैं, लेकिन काली ने क्या किया वो तो नहीं जानते ना। तो बाबा कहते हैं कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है, शक्ल अलग अलग। अब जगत अम्बा के कितने नाम है, सरस्वती भी है, काली भी है, और माँ भी है, कितने टाइटल है, तो शक्ल उनका रूप अलग अलग बना देते हैं ना। तो बाबा कहते शक्ल अलग अलग है, जगत अम्बा कौन है ये कोई भी नहीं जानते, उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, भगवान कौन है वो तो एक ही है ना। जगत अम्बा को बाबा कहते भगवती नहीं कह सकते, लेकिन उसके टाइटल अनेक हैं। ये तो ब्राह्मण है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिलता है। जगत अम्बा जो है ये ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, इनको बाप से ज्ञान मिलता है। तुम सब कौन हो? जगत अम्बा के बच्चे। तो कौन हुए? जगत अम्बा के बच्चे कौन हुए? ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, ज्ञान ज्ञानेश्वर और ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ज्ञान सुनकर फिर तुम सुनाते हो, तुम्हारा धंधा भी ये हुआ। कौन सा धंधा है तुम्हारा? कौन सा धंधा है? ज्ञान सुन के मनन करके दूसरों को सुनाना। तो बाबा कहते तुम्हारा धंधा भी ये हुआ, तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। अब आप देखो, ऐसा स्कूल कहीं देखा जहां पर बूढ़े भी पढ़ रहे हैं, जवान भी पढ़ रहे हैं, 80 साल वाला भी पढ़ रहा है, 5 साल वाला भी पढ़ रहा है। दुनिया वालों को बताते हैं कि स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, कि ये बूढ़ा स्कूल में कहां पढ़ने जा रहा, क्योंकि ये तो आत्मा का ज्ञान है ना। तो बाबा कहते यहाँ जो पढ़ाने वाला है वो कौन है? ईश्वर है। बाबा कहते तुमको ईश्वर पढ़ाते, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। तो नशा रहना चाहिए ना। कौन पढ़ाते? बाबा हमको पढ़ाते, बाबा ही पढ़ाने वाला, बाबा ही हमारा टीचर है। तो बाबा कहते नशा रहना चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है ना। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं। कई बार कई बच्चे होते हैं, कोई व्यक्ति होता, कितना भी समझाओ बुद्धि में बैठता ही नहीं। उसको क्या कहते हैं? अरे तुम इतना डल हो गया, इतना समझाया, तुम्हारी बुद्धि नहीं बैठता। तो बाबा भी कहते हैं मनुष्य इतने तमो प्रधान, उनकी बुद्धि इतनी डल हो गई है, कुछ भी समझाओ समझते नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वे आते ही है पतितों को पावन बनाने। ये सारी दुनिया तमोप्रधान है, सब पतित हैं। नई दुनिया पावन और पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी और नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले पहले सूर्यवंशी देवता थे। अच्छा, जो सूर्यवंशी बनने वाले वो हाथ खड़ा करो। बाबा कहते तुम सब नई दुनिया के शुरुआत में आओगे, तो पहले पहले जो चंद्रवंशी है तो बहुत बाद में आएंगे, तो आप सब सूर्यवंशी बैठे ना। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो नई दुनिया में पहले पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। अब एक राजधानी के बाद दूसरा आता है तो वो पास्ट हो जाता ना, तो सूर्यवंशी फिर पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का पहले राज्य था। तो बाबा कहते ये चक्कर जो घूमता रहता है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इनके आगे क्या था? बाबा कहते उनको पूछो। अभी कहते सूर्यवंशी, पहले उसके पहले क्या था? पहले रात है तो उसके आगे क्या था? कहेंगे दिन था। दिन के बाद रात है तो रात से पहले क्या था? दिन। और रात के बाद क्या? ऐसे पूछते ना, दिन के बाद क्या? रात है। तो बाबा कहते हैं अच्छा उनके आगे क्या था? वह कुछ समझ न सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं। तुमको बाप ने अपना बनाया। कितना नशा, बाबा ने हमको चुना है। कितने भाग्यशाली हैं, कोटों में कोई, कितनों में से कोई, केवल बाबा ने हमको चुना है। अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया। शूद्र वर्ण से हम बनते हैं ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से हम देवता बनते हैं। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, ना ही लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ना ही राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। दुनिया वाले भी कहते कलयुग पूरा हो रहा है, अब इसके बाद सतयुग आना चाहिए, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, वो तो नहीं समझते ना। तो बाबा कहते जैसे रात के बाद दिन के बाद रात आता है, ऐसे ही कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में ये पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी हैं, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? बाबा कहते थे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, वहां जाकर के पुजारियों को बताओ, अच्छा माथा तो ठीक थे लेकिन बने कैसे, उनको राज्य किसने दिया? अच्छा लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई नहीं बता सकता है, कोई के ख्याल में भी नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कि कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े। पहले कहते थे 40,000 वर्ष पड़े, अभी तो समझते हैं कि दुनिया का विनाश होना है, पता नहीं क्या होगा, दुखी हुए पड़े, दुनिया के नाम से ही दुखी हैं, हालात को देख के ही परेशान हैं, क्योंकि समझते कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए ये ख्याल आते ही नहीं। अभी तुमको ये ख्याल आता है? कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती है ना, कई बच्चे बाबा को आते, अभी भी कई आते हैं, कहते क्या करें हमारी बुद्धि बैठती नहीं, हमें बाबा को याद नहीं कर सकते। बाबा कहते क्या बात करते हैं, बच्चा अपने बाप को याद नहीं कर सकता है क्या? फिर कई बच्चे बाबा को कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है? अब बाबा बच्चों से प्रश्न पूछते क्यों नहीं रहती है, बाबा पूछते हैं बताओ अभी क्यों नहीं रहती है? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। एक है बाबा को याद करना, याद के साथ साथ ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार की धारणाओं को भी तो अपनाना है ना, तो सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते, समझते भी हैं फिर भी किसको समझा नहीं सकते। ये तो जरूर होगा सब एक रस तो समयदार बन न सके। अब बाबा ड्रामा को भी जानते हैं, सृष्टि चक्र को भी जानते हैं, बाबा कहते सब एक रस नहीं होंगे, नहीं तो विश्व महाराजन सब बन जाएंगे, कोई विश्व महाराजन बनेगा, कोई रॉयल फैमिली में आएगा, कोई कैसे आएगा, सब एक रस तो समझदार बन न सके, समझदार भी चाहिए। और बाबा ने एक बात और कह दिया, बेसमझ भी चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए नहीं, एक बार बाबा मुरली में कहा था समझदार से समझदार देखना हो तो यहाँ के देखो, बेसमझ से बेसमझ देखना तो वो भी यहाँ के देखो, क्योंकि बाबा के घर में बैठे हैं, बुद्धि इधर भटकती है, इधर उधर की बातें करते हैं, ग्लानी करते हैं, खुद के लिए दूसरों के लिए, बाबा भाग्य दे रहा उसको ना लेकर के दूसरों के लिए कुछ कुछ करते रहेंगे तो बेसमझ हो गया, उसको कोई पद नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते समझदार भी चाहिए। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा ना, ऐसे बेसमझ क्या बनेंगे, चंडाल जाके बनेंगे ना, वो भी तो चाहिए ना, प्रजा भी चाहिए, चंडाल भी चाहिए, राजा भी चाहिए, रॉयल फैमिली के भी चाहिए, आप सभी तो रॉयल फैमिली वाले हैं ना। बाबा कहते मेरे सामने बाबा के घर में जो बच्चे बैठे हैं वो सब के सब रॉयल फैमिली के हैं, बेसमझ भी चाहिए, बहुत समझदार तो जाकर के राजा रानी बनेंगे, समझदार भी चाहिए। अच्छा, समझदार जास्ती समझते हैं और समझाते भी हैं, उनका नाम वाला होता है, प्रदर्शनियां होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो, क्योंकि पहले बाबा के टाइम पर शुरू में प्रोजेक्टर शुरू हुआ था, फिर उसके बाद बाबा को लगता था प्रोजेक्टर की सेवा जो है ना, रात को अंधेरे में होता था, बाबा को इतना अच्छा नहीं लगता था, फिर रमेश भाई ने प्रदर्शनी का, रमेश भाई और दादी प्रकाश भाई और निव्या भाई ने सब ने मिलकर के प्रदर्शनी का आइडिया निकाला और ये प्रदर्शनी लगाई, तो प्रदर्शनी में हमेशा बाबा कहते थे अच्छे अच्छे हैंड्स को भेजो जो ऐसे हो, ऐसा ना कोई आए बहस करता रहे। तो बाबा यही बता रहे हैं प्रदर्शनियां होती है तो लिखते बाबा फलानी को भेज दो, तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा को लिखते थे बाबा फलानी बहन को भेज दो, इसको भेज दो, फिर बाबा ऐसे नहीं भेजते थे, बाबा कहते थे अच्छा पहले बताओ प्रदर्शनी में कौन कौन आने वाले, अगर सन्यासी हैं तो उसी हिसाब से किसी को भेजेंगे, अगर कोई और आने वाले हैं तो उसी हिसाब से उसको भेजेंगे, अगर कोई टॉप के VIP है उसी हिसाब से उसको भेजेंगे। तो आज बाबा ने देखो कहाँ कहाँ नाम दिए हैं, तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जांचती है, क्योंकि शुरू में डरते थे ना समझाने में, तो उसमें बाबा को कहते बाबा हम इतना नहीं समझा सकते, उनकी प्रैक्टिस जांचती उनको भेजो, हम थोड़ी कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहां से निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ होता है, कई विशेष निमंत्रण, कौन सी कॉन्फ्रेंस है, धर्म पिताओं की है या कोई और वैज्ञानिक की है, तो फिर बाबा उसी हिसाब से भेजते थे। तो बाबा कहते थे कहां से निमंत्रण मिलता तो लिखकर भेजो, कौन कौन है तो हम देखेंगे कि किस किस को भेजना है, सन्यासी भी उस निमंत्रण पर क्या है, अगर किसी कहीं पर सन्यासी आ रहे हैं और कहीं पर संत सम्मेलन है तो कौन समझा सकता है। मुझे याद आता भी क्योंकि ये महीना जगदीश भाई का महीना है ना, ईश्वरादी का भी है, जगदीश भाई का भी है। एक बार अमृतसर में बहुत बड़ी संत महात्माओं की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस समय दादी ने जगदीश भाई को भेजा था। इतनी बहस करते थे, बहुत बहस करते थे, बहस करते कहते शास्त्र अर्थ करो, और जगदीश भाई को तो सभी शास्त्रों का ज्ञान था। फिर बोला कि आप तो आत्म अभिमानी रहते हैं, आपके हाथ में अगर हम अंगारे रख दे तो जगदीश भाई मुस्कुराने लगे, कोई करेगा नहीं, लेकिन बहस करते थे। तो इसलिए बाबा कहते जो सन्यासी होंगे उनको समझाने के लिए वैसा ही बताएंगे ना। तो बाबा ने कहा सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या, फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा, अगर सन्यासी आ रहे हैं, सन्यासियों का प्रोग्राम है तो बाबा कहते ऐसी वैसी को नहीं भेजेंगे, फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना पड़ेगा, वो ब्रह्मा कुमारी जो बहुत प्यार से समझे। आप सबको पता है ना देहरादून में खास करके ऋषियों महात्मा सन्यासियों की सेवा को करने के लिए बाबा ने प्रेम बहन को भेजा था। प्रेम बहन कहती थी बाबा यहाँ पर तो आते ही नहीं लोग, मैं क्या करूँ। बाबा ने कहा तुम कुछ नहीं करो, बैठी रहो और मीठी मीठी बातों से उनको समझाती रहो। बाद में तो इतने प्रभावित हुए, अगर प्रेम बहन ना मिले तो उसको याद करते थे और इतनी प्यार से बातें करते थे। प्रेम बहन भी बहुत मीठी मीठी बातें करती थी, सन्यासियों की सेवा बहुत अच्छी किया, सारा सन्यासी सारा जो महात्मा थे उन सबको बहुत अच्छी तरह से। इसी तरह बनारस में भी बाबा ने खास सुरेंद्र बहन और गुप्ता जी को भेजा था, उन्होंने भी बहुत सेवा की। तो बाबा कहते जैसा व्यक्ति होगा वैसा उसको समझाने के लिए भेजेंगे। तो बाबा कहते हैं सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या, फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा कुमार का है, अब सबसे अच्छी समझाने वाली बाबा ने नाम लिया कुमार का। कुमार का मिस दादी प्रकाशमणि, जिन्होंने दादी प्रकाशमणि को नहीं देखा वो हाथ खड़ा करो, नहीं देखा, देखा ही नहीं आपने, अच्छा अच्छा। फिर मनोहर है, मनोहर दादी, मनोहर दादी को नहीं देखा वो हाथ खड़ा करो, बहुत है, अच्छा। फिर तीसरा बोला गंगे दादी, गंगे दादी भी बहुत पुरानी, इनका इतिहास इतना लंबा है, मनोहर दादी गंगे दादी का सेवा के लिए कैसे यमुना कंठे पर बैठ करके सेवा करते थे वो बताया। तो बाबा कहते अच्छा कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इनमें से किसी को भेज दो, बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तो प्रदर्शनी के लिए वो लिखते थे बाबा को, बाबा जगदीश भाई को भेज दो और रमेश भाई को भेज दो, तुम भी समझते हो एक दो से होशियार है, जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं एक दो से होशियार होते हैं, गवर्नमेंट जानती है कि ये एक दो से होशियार हैं, तब तो केस एक दो के ऊपर जाते। अब कोई जज है सिंपल है तो क्या होगा, वो नहीं कर पाता तो केस ऊपर हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो बाबा कहते हैं तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर जाओ, उसने भी जजमेंट ठीक ना दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे। समझो हाई कोर्ट ने जजमेंट ठीक नहीं दिया तो फिर कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर उनसे भी ऊपर जाएंगे, उनके ऊपर तुम रहम करो। अब बाबा ने क्या कहा, जजेस के ऊपर भी तुम रहम करो। अब ये सब बातें यहाँ होती हैं, सतयुग त्रेता में ये बातें नहीं होती। सतयुग में न जज होगा, ना एडवोकेट होगा, ना डॉक्टर्स होंगे, ना पेशेंट होंगे। तो बाबा कहते हैं कुछ नहीं होगा, डॉक्टर्स कहते हम क्या करेंगे, अरे वहां जाकर के राज्य करेंगे ना, और बहुत सेवा करते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य कमाते हैं, तो वहां जाकर के राज्य करेंगे। तो बाबा कहते हैं उनके ऊपर तुम रहम करो। अब ये सब बातें यहां होती हैं, सतयुग त्रेता में नहीं होती। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते। सतयुग में तो कोई केस होता नहीं है, द्वापर से जब कोई केस होते हैं शुरू शुरू में राजा महारानी ही राजा महाराजा ही संभालता था, बाद में जाकर के वजीर रखने शुरू हुए। तो बाबा कहते हैं वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं, केस होगा तो होगा, केस भी थोड़े होंगे। अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस किया जाए तो थोड़ी सजा दे सकते उस समय द्वापुर से। और इवन कलयुग के शुरुआत में भी कई कई केस होते थे, राजाओं के पास जाते थे, छोटी मोटी बातें होती थी तो राजा छोटी मोटी सजा दे के उनको समझा के भेज देता था। तो बाबा कहते हैं कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर, जज वकील इतने इतने हैं जो बात मत पूछो, झूठ को सच कर देते और सच को झूठ बना देते, क्या क्या करते रहते। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, इतना कारोबार में फर्क है, कहाँ सतयुग में कोई भी जज वकील नहीं, और द्वापुर से भी राजा महाराजा है, और अभी कलयुग अंत में कितने जज वकील हैं, कितना कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता है ये किसको भी पता नहीं। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, जैसे बिरला है बहुत मंदिर बनाते रहते हैं। बाबा के टाइम पर जो बहुत बड़ा अमीर कहे रिचेस्ट कहे भारत के अंदर बिरला था, और बिरला जो था बहुत, बाद में तो कई आए डालमिया आए ये सब आए, तो बिरला बहुत मंदिर बनाते रहते, भक्ति भावना थी, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते थे। तो बाबा कहते हैं मंदिर बनाते जा रहे हैं, लेकिन उनको समझाओ कि लक्ष्मी नारायण कौन थे, कैसे राज्य पाया। तो बाबा कहते हैं जैसे बिरला है बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे। फिर कई भाई बहने गए थे, उनको समझाया भी था और उनको बहुत अच्छा लगा। हूँ तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इनों की राजधानी कैसे मिली, जबकि सतयुग में से पहले कलयुग था। बाबा की तुमको बताओ कि उन्होंने ये राज्य कैसे पाया, सतयुग से पहले तो कलयुग था, कलयुग में तो कुछ है ही नहीं, देवताओं ने तो कोई लड़ाई की ही नहीं, लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। विश्व के जो मालिक थे उन्होंने लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों से। शुरू में द्वापुर से जब लड़ाई शुरू हुई तो कैसे करते थे, हथियारों से, तीर कमान आदि, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, फिर कलयुग स्टार्टिंग में आ गए, अंग्रेज आ गए, फिर बंदूक चलाने लगे, और अभी तो क्या चलती है, बॉम्ब से चलती है ना। यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है कि क्रिश्चियन धर्म वाले आपस में मिल जाएं, आपस में प्रीत रखें, तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। बाबा कहते इतने पावरफुल हैं, अगर ये आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। लेकिन ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं, वो आपस में लड़ेंगे, खत्म हो जाएंगे, और राज्य किसको मिलेगा, तुम बच्चों को। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है कि ये आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन ना सके। क्रिश्चियन चाहे थोड़ा बहुत ज्ञान भी सुन ले, लेकिन विश्व महाराज विश्व महारानी नहीं बन सकते। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो कला पहले भी संगम पर बाप से पद पाया था, 84 जन्म पूरे हुए फिर से बाप से वर्षा ले रहे। कलप पहले भी लिया था, अभी भी लिया है, लेंगे। 84 जन्म पूरे हुए, फिर से हम बाबा से वर्षा ले रहे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आप सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना। स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक परलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है। यही तुम्हारा धंधा। क्या धंधा है? बाबा ने जो ज्ञान दिया दूसरों को सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। आज का वरदान समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन एक रस स्थिति में स्थित एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। समाने की शक्ति होगी तब एक मत हो सकते हैं, नहीं होगी तो फिर आपस में बातें करते रहेंगे ना। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई भी बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ। कई बातों में ना भिन्न भिन्न विचार होते हैं, तो बाबा कहते हैं यदि कोई भी बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो तब सर्विस में रौनक आएगी। अच्छा अव्यक्त इशारा है। टाइटल क्या है? सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का है वह घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते औरों को भी शक्ति देते चलो। बाबा कहते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते और आप एक रस स्थिति में रहे उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आते उसे शक्तियों का शांति का दान देते चलो। अच्छा ओम शांति। ओम आज तो सभी भट्टी वाले भी बहुत अच्छे अनुभव कर रहे हैं और भट्टी वालों का भी एक शुभ संकल्प है कि आज मदर्स डे है तो बहने बार बार मदर्स डे के लिए भी अपने कुछ फीलिंग्स और सरिता बहन क्या है इनका, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो भट्टी वाले सब बैठे रहे, और भी कोई बैठना चाहे तो भल बैठे। अच्छा भट्टी की बहने और भाई सब हाथ खड़ा करो, सब ठीक है बाबा के घर में? बाबा अच्छी तरह से भरपूर कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा चांस मिला बाबा के घर में। इनको बुला लो डांस कर ले, अभी क्या टाइम हो गया ना इस समय, है ना, जो भी जिसको करना हो कर ले थोड़ा।
ओम शांति। मदर्स डे और आज बाबा ने मुरली भी मदर्स के ऊपर चलाई है, योगा योग देखो क्या है। और मदर्स डे के निमित्त से मंगलवाड़ी की जो हमारी टीचर्स बहने हैं, आज हम वो अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं।
गीत और डांस से कर दो।
और वो डांस करने वाली सारी टीचर्स बहने ऊपर आ जाए, टीचर्स बहने ऊपर आ जाए, और वो गीत भाई को दे दो, संतोष भाई को गीत दे दो,
आगे बुला लो आगे,
और आप ऊपर आ जाओ स्टेज पर आ जाओ, मंगलवाड़ी की टीचर्स बहने सब ऊपर आ जाओ और वो गीत भाई को दे दो। जैसे आज बाबा ने कहा है, शिव बाबा माँ है, ब्रह्मा बाबा भी माँ है, साथ में जगदम्बा माँ भी माँ है, और फिर अभी हम देखते हैं मधुबन में साकार में हमें जो पालना दे रहे हैं आदरणीय शशि दीदी जी, उनको भी हम शीलू दीदी जी, शशि दीदी जी, तो ये दोनों भी आज हमारी माँ के रूप में हैं। तो आइए हम सभी बहने मिलकर इन माँ का विशेष रूप से अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे, और वो गीत भाई को भी देंगे और टीचर्स बहने भी ऊपर आ जाए।
जिनको भी करना है कुछ आगे आ जाए, कुछ स्टेज पे आ जाए,
टीचर
स्टेज पे आ जाए और भाई आगे नीचे आ जाए।
माताएं आप आगे वहां यहां आ सकते हो, माताएं मंगलवाड़ी की माताएं,
भाई इधर आ जाए,
भाई इस साइड से
भी करना,
और टीचर्स बहने स्टेज पर,
टीचर स्टेज पे आ जाए,
भाई
सामने आ जाए। हाँ
आओ आओ टीचर्स बहने। कल बहुत सुंदर तरीके से जब आदरणीय शशि दीदी जी सौगात देने आए थे, तो इतने सुंदर तरीके से उनका माँ के रूप में स्वागत किया था, अपनी भावना एक्सप्रेस की थी।
चलो शुरू करिए,
शुरू करो आप सभी। अच्छा यहाँ दीदी के सामने आपने करना है ना?
नहीं वहीं करो ना, खड़े कहीं भी करो। हाँ करो जल्दी करो, जल्दी करो।
अच्छा दीदी गीत प्ले हो रहा है।
अच्छा गीत सेट हो,
और तब तक माताएं आप यहाँ बीच में आ जाओ ना, आगे यहाँ पे। हाँ यस, भाई लोग अब इस साइड में,
भाई भी इधर आ जाए,
भाई आप इस जन्म में भाई, पिछले जन्म में बहन थे,
भाई नीचे।
चलो उठो, अपने अंदर की इस क्वालिटी को आपको एक्सप्रेस करना है। हाँ ये क्वालिटी आपको अगले जन्म में काम आएंगे, सतयुग में श्री कृष्ण के साथ रास करने में।
करो।
हाँ गीत बज रहा है इसीलिए सभी थोड़ा सा ये कर रहे हैं, ठीक है,
और बाद में गरबा करते रहना। नहीं गरबा करना है ना इनको, कौन सा गीत, कौन सा गीत,